हफीज़ जान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सामिन, जिक्र हो रहा है नेशनल लैंग्वेजेस कंपटीशन के बारे में, जिसकी बात मैंने आपसे प्रोग्राम में आपसे कुछ देर पहले भी की थी। हमारे साथ मौजूद हैं सिडनी से जनाब हफीज़ जान, जो कि एक उर्दू स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं, और इनसे हम ज़बानों पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकालने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ख्याल है आपका, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए हमें, हमारी कम्युनिटी को, उर्दू बोलने वालों को कितना ज़रूरी है कि वो अपने घरों में उर्दू ज़बान बोलें?
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जन भाई, आपने मुझे मौका दिया। मेरे ख्याल से जिस मुल्क में, जिस वतन में हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ की लोकल ज़बान तो बच्चे ज़रूर सीख लेते हैं, क्योंकि वो स्कूल भी जाते हैं, कम्युनिटी से इंटरेक्शन भी होता है। अपने जो उनकी कम्युनिटी लैंग्वेज है, जो कि उनके माँ बाप और बाकी ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं, उनको उसकी बेसिक्स बहुत ज़रूरी सिखाना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि उनकी जो इंटरेक्शन अपने ग्रैंड्स और उनके कज़न्स और बाकी लोग जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़रूरी है। ये बैरियर जो लैंग्वेज का है, ये अपने रिश्तों में दूरियां भी कर देता है, और ये फर्दर जो है एक दूसरे से मिलना जुलना, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं अपने मुल्क जाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ एक डिफरेंट ज़बान बोली जाती है, एक्सेंट डिफरेंट होता है, और ये हमारे बच्चे जो हैं इनको बिल्कुल वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें समझ नहीं आती, वो ना वो ज़बान बोल सकते हैं, ना वो लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ना वहाँ के अखबारात पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से उनकी दूरियाँ जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं।
हफीज़ साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, ये कि वो बच्चे जो यहाँ पे पले बड़े हैं या यहाँ पैदा हुए हैं, वो अपने फिर वतन भी शायद नहीं चाहते, वो ये देखते हैं कि ज़बान नहीं बोली जा रही। तो अगर कोई माइग्रेंट यहाँ पे आता है जो उर्दू पहले से ही बोलता है, लेकिन उसकी फैमिली अगर बढ़ती है यहाँ पे, तो यकीनन एक चैलेंज है उर्दू ज़बान अपने घर में ज़िंदा रखना और बच्चों को सिखाना। तो उस पर किस तरह से काम किया जाए, इस मुश्किल को किस तरह हल किया जाए?
ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो भी नया माइग्रेंट, जो भी नई फैमिली आती है, उनके लिए बहुत सारे इससे भी जो है वो ज़रूरी चैलेंजेस होते हैं, जैसे रोज़गार की तलाश है, किसी इलाके में आके सेटल होना है, बच्चों को इंग्लिश वाले स्कूल, जहाँ इंग्लिश ज़ाहिर है हर स्कूल में बोली जाती है, उसका बच्चे को चैलेंज होता है। तो ये अपनी जो कम्युनिटी लैंग्वेज होती है उसको वो ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए नहीं कि वो उसको बोलना नहीं चाहते, उनको कई साल तक टाइम ही नहीं मिलता बाकी मजबूरियों की वजह से, डे टू डे मॉर्गेज पूरी करने के लिए उनकी दौड़ लगी होती है। तो इस तरह से फिर एक वक्त आता है कि वो बच्चा जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, वो कहता है कि मैंने अब ये जो ज़बान सीख लिया है मैं इसी में कम्फर्टेबल हूँ। तो हमने इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया कि सिर्फ पेरेंट्स को कन्विंस किया, आप सिर्फ सैटरडे को आप एक उर्दू का दिन डिक्लेयर कर दें अपने घर में, सुबह जब बच्चा उठता है तो उसके साथ आप उर्दू बोलें, उसको आप उर्दू स्कूल में लेके आए, और शाम को भी उसके साथ जितनी हो सकता है उर्दू, तो हफ्ते में एक दिन उर्दू आप बोलें। और उसको जो हमने फिर बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता से जो मैनर्स सिखाए हैं, जैसे कि उसको आदाब सिखाए हैं, तो उस वो अब देखें फर्क ये उनको महसूस होना शुरू हो गया उन पेरेंट्स को, कि जब पाकिस्तान से फोन आता है या जब ये लोग फोन वीडियो कॉल करते हैं, तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ उर्दू में बात करते हैं, और उन्होंने ये पूछा, हर फैमिली से पूछा है कि इस बच्चे ने उर्दू कहाँ से सीखी, पिछले साल जब ये पाकिस्तान आया था तो ये नहीं बोलता था। तो इस तरह से उनकी हौसला अफजाई हुई है, बच्चों की भी और उनके वालदैन की भी।
अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, और मेरे ख़्याल से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ये टॉपिक बहुत अहम है, जिसके बारे में अक्सर बात होती है सियासी हलकों में भी, जिसके आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में कहा जाता है कि वो कम्युनिटीज़ जो कि अपने ही एक क्लोजेट में रहती हैं, अपने अपने ग्रुपों में रहती हैं, अपनी ही ज़बान में बोलती हैं, उनको कुछ मुश्किल होती है मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से जुड़ने में, कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से भी और ज़बान के हिसाब से भी। तो आपको क्या लगता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है भी या नहीं?
देखिए, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हों, मसलन पाकिस्तान में जब हम रह रहे हैं, तो हमें उर्दू या अपनी इलाकाई ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं होती, हम उस वक्त वहाँ पर दूसरी ज़बानें सीखते हैं। जैसे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजा जाता है कि ये इंग्लिश सीखे, तो क्या वो बाकी पाकिस्तानी लोगों से वो कट जाता है? नहीं, इसी तरह यहाँ पर जब हम मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, वहां की एजुकेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्रोफेशनली जॉब करते हैं, तो हम सबके साथ बंधे होते हैं। मगर अगर आप ये सोचें कि उसको उर्दू जबान नहीं आती तो वो उर्दू लिटरेचर नहीं पढ़ेगा, अपनी जो ओरिजिनल कम्युनिटी थी उससे कट ऑफ होगा, ना कि मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से।
मैं कुछ वालदैन के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि हमारी ही कम्युनिटी में हमने देखा है, और इसका जिक्र आपने भी हमसे गुफ्तगू में किया, कि कुछ वालदैन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा उन रिलक्टेंट होते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि उर्दू ज़बान सिखाएं या ऐसे तालीमी इदारों में भेजें जहाँ उर्दू ज़बान सिखाई जाती हो, अपने बच्चों को वहाँ भेजना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते।
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वालदैन को चूंकि टाइम ही नहीं है सोच, ये वाली सोच सोचने का, कि अगर वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी जो है 7-8 साल के हैं तो हमें यही सोचना है कि इस वक्त उन्हें क्या करना है, मगर वो ये नहीं सोचते कि 15 साल का भी होना है बच्चे ने, 20 साल का भी होना है, इसकी शादी भी होनी है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे वालदैन जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर सोच नहीं रखी, उन्होंने ये सोचा विजन ही नहीं किया कि अगर ये उर्दू अपनी इलाकाई जबान नहीं सीखेगा बच्चा, तो जब ये जवान हो जाएगा तो इसके क्या असरात होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है। वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहाँ सिर्फ हमें इंग्लिश की जरूरत है। अगर सिर्फ इंग्लिश की जरूरत है तो फिर उनके हो सकता है जेहन में यही हो कि ना हमने अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ कोई इनका रابطہ रखना है, या कोई बंधन बांधना है उनके साथ, या अपने कोई सियासी, या कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि इन्होंने जाके अच्छी तालीम, अच्छा प्रोफेशन लेके अपने मुल्क में खिदमत करनी है। अगर इनमें से कोई भी एक बात उनके जेहन में है तो उनको चाहिए कि कम्युनिटी लैंग्वेज बच्चे को जरूर सिखाएं। ये एक ऐसा एसेट है जो कि बच्चा जो है ईयर 10 से पहले पहले ही सीख सकता है, बाद में नहीं।
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगला सवाल यही था कि आपका क्या ख्याल है कि किस एज में सिखाई जाए ज़बान। लेकिन ये बताइए कि अगर कोई शख्स है जो कि शायद 20-21 साल का है या उससे भी ज़्यादा उम्र है, उर्दू इतनी बेहतर नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें सीखनी चाहिए, तो उनके लिए चैलेंजेस यकीनन मुख्तलिफ होंगे, तो अगर उन्हें सीखनी हो तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्या किया जाए कि वो भी ज़बान के करीब आ सकें?
जी, अब कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स का जो करिकुलम है उसमें ईयर 2 से लेके ईयर 12 तक कम्युनिटी लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने ये सिलसिला जो है इंट्रोड्यूस किया है, मगर हमारा एक्सपीरियंस है कि ईयर 10 के बाद सिर्फ हमारे पास ईयर 11 और 12 का एक या दो बच्चा ही होता है, क्योंकि उनका मेन स्ट्रीम का जो लोड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो जैसे आपने बात की कि बड़े जो हैं बच्चे यूनी लेवल के या प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनका सिर्फ टाइम कंस्ट्रेन है, उनके लिए अगर अलहदा से डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएं, जिनमें जाहिर है कि पहले फेज में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि उनको लिखना और वो पढ़ना जो है उसके ऊपर लेके जाया जाए, उनको सिर्फ गुफ्तगू तक लेके आए ताकि वो डिस्कशन ग्रुप्स का एक हिस्सा बने, उर्दू बोलें, उर्दू समझें, और उसका फिर नेक्स्ट स्टेज जो है वो लिखना और पढ़ना होगा, मगर प्रैक्टिकली हो सकता है और ऐसे हो रहा है कई जगह पर।
ठीक, और एक और बात ये कि उर्दू ज़बान हो या कोई भी ज़बान हो, अगर आपको एक से ज़्यादा ज़बान, जो भी ज़बान आप बोलें, एक से ज़्यादा ज़बान अगर आपको बोलनी आती हैं, तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं, अगर आप उनको बताते हैं कि आप एक से ज़्यादा ज़बानें बोल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके चांसेस भी बढ़ सकते हैं जॉब हासिल करने के भी।
जी बिल्कुल, अब आप देखें कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो तमाम उर्दू और हिंदी बैकग्राउंड से मेजॉरिटी इस वक्त आ रहे हैं, और हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो या हाउसिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, तो इसमें मेजॉरिटी जो माइग्रेंट पिछले 5-7 साल में आए हैं वो हिंदी या उर्दू बोलते हैं। और अगर हम ये जबान जानते हैं और मैनेजेरियल लेवल पे भी लोग अगर पहुंच जाते हैं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन जो नए आने वालों के साथ होगी, अगर उनको कहीं डिफिकल्टी है तो आप हिसाब लगा लें कि क्या वो फर्क होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट जबान जानने से वो उनका कल्चर भी जानेंगे, उनका बिहेवियर भी जानेंगे, उनके ऊपर जो लिटरेचर अवेलेबल है दूसरी जबानों में वो भी पढ़ सकेंगे।
मैं आपसे आखिरी सवाल ये करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है किसी भी जबान के फ़रोग के लिए लाइब्रेरीज की क्या वैल्यू होती है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में अगर एक लाइब्रेरी हो जहाँ सिर्फ उर्दू लिटरेचर मौजूद हो तो कितना फ़ायदेमंद होगा यहाँ पे उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के लिए?
जी, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली फिज़िकल लाइब्रेरी जाना पढ़ना उसका रवाज जो है वो बहुत ख़त्म हो रहा है। फिज़िकल बुक्स भी पता नहीं आइंदा सालों में अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि लाइब्रेरीज हमें ज़रूर हमारे पास होनी चाहिए। जहाँ तक लाइब्रेरी मौजूदा लाइब्रेरीज में उर्दू के सेक्शन हैं उसमें मुझे कई लाइब्रेरीज में जाने का इत्तेफाक हुआ है, और मैं उससे मुतमिन इसलिए नहीं हूँ कि बड़े अननोन राइटर्स की किताबें पढ़ी हुई हैं। अगर उन बुक्स को आप लेके पढ़ने की कोशिश करें तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो बच्चों के लिए हैं, क्योंकि वो किस मकसद के लिए लिखी गई हैं, उनमें क्या उनका थीम क्या है वो भी मेरी समझ में नहीं आया। तो किसी भी किताब किसी भी लाइब्रेरी के लिए जो किताब वहाँ रखी जाए उसके ऊपर देखना ये चाहिए कि वो राइटर जो है वो क्या किसी लेवल का रिकमेंडेड राइटर है, उस किताब का थीम क्या है, उसका एज ग्रुप के हिसाब से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई। लाइब्रेरीज होनी चाहिए मगर उसके साथ उनको थोड़ा किसी हिसाब से भी होनी चाहिए,
यानी एक मयार हो,
एक मयार हो उस मयार के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ लिटरेचर जो है वो लाइब्रेरी इसलिए नहीं बनानी कि उसमें कुछ लिटरेचर हो, हमने अपनी जनरेशन को कम्युनिटी लैंग्वेज सिर्फ सिखानी नहीं है, उसका ये भी ख्याल रखना है कि उसको हमने सीधे रास्ते पे भी रखना है, गुमराह तो नहीं करना है।
बहुत शुक्रिया हफीज़ जान साहब हमसे गुफ्तगू करने का, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को भी गुफ्तगू पसंद आई होगी।
बहुत शुक्रिया, और ये हमारी फ्री क्लासेस होती हैं वेस्टर्न सिडनी उर्दू स्कूल की, और मैं आपके अदारे की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को जो कि न्यू साउथ वेल्स और लिवरपूल एरिया में स्पेशली रहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजा करें।